नियम सार कारण कार्य नियम पुस्तक दूसरी लेक्चर नंबर 74। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सौवसाणं नमिऊणजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंशनसहावम् वोच्छामीणियमसारम् केवली सुदकेवली भणिदम्। आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह नियम सार नामक ग्रंथ है। उस पर पद्म प्रभु मलधारी देव जी ने तात्पर्य वृत्ति टीका लिखी है और इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन हुए हैं, जो कारण कार्य नियम पुस्तक रूप से आए हैं अपने हाथ में। ये दूसरी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 11 पर हम आ गए, 11 अंतिम पंक्ति लास्ट लाइन, वहां से हम पढ़ेंगे। देखो क्रमबद्ध में आयु छे ने, जे समय मोक्ष थाय छे ए समय ज थाय छे। अकेली मोक्ष की बात नहीं, प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय सुनिश्चित अपने समय पर उत्पन्न होती है, क्योंकि द्रव्य में ही वैसा धर्म है। यानी उसमें जो एक एक समय की पर्याय की योग्यता पड़ी है, अनादि अनंत सभी। हमारे एक प्रश्न थयो तो, आ तो रूपचंद जी लक्ष्मण आया, रूपचंद जी त्या ध्यान विजय छे ने, क्यूँ गाम कीधु, गजपंथा मा अमे गया था, त्या श्वेतांबर ना ध्यान विजय हता ने, એને અમારી વાત સાંભળીને શ્વેતાંબરપણું છોડી દીધું। ધ્યાન વિજય હતા, સોની હતા, કેવા પરાજિયા સોની, એ કોઈ ઉસમે ભેદ હો ગયે કાસ્ટ વાઇઝ। હા, અહીંનું વાંચીને ઘણી વાત કરતા હતા, પછી અમે ત્યાં ગયા તો અમને ઉડબેસ કરીને પગે લાગ્યા। મેં કીધું શું થયું, આ બોલો છો તો શું છે, તો બપોરે જવાનું હતું, અમે ત્યાં ગયા, ઓરડી બંધ હતી, ઓરડી ખોલી, અમારા દર્શન કર્યા, પછી બેઠા। મેં પૂછ્યું, કીધું પ્રવચન સારમાં એમ આવ્યું છે કે કાળે મોક્ષ અને અકાળે મોક્ષ એવો પાઠ આવ્યો છે, આમાં તમારું ક્રમબદ્ધ ક્યાં રહ્યું? તમારું હા લોક એસે કહેતે આપકા ધર્મ ક્યાં કહેતા હૈ, જઈને એસે પૂછતે આપકા ધર્મ ક્યાં કહેતા હૈ ઇસકે લિયે। ક્રમબદ્ધ એમ તો નહોતું પૂછ્યું, પણ કાળે મોક્ષ છે અને અકાળે મોક્ષ છે, તો કાળે મોક્ષ છે તો 47 ને ના પાડે છે। રૂપચંદજી સાથે હતા, 4-5 જણા હતા, ગજપંથા નાસિક નાસિક, ત્યાં એમ પાઠ કહ્યો છે કે જે સમયે મોક્ષ થશે એ કાળને અને બીજો અકાળને પણ લીધો છે, તો એ કાળે મોક્ષ થાય છે એમ નહીં, અકાળે પણ મોક્ષ થાય છે, આ પાઠમાં લીધું છે તો એનો અર્થ શું? 47 ને પ્રવચન સાર, તો એ સમજી ગયા કે હું કહીશ તો મારી વાત સાચી નહીં પડે, કહ્યું મેં વિચાર કર્યો નથી, એમ કહીને છોડી દીધું, મેં વિચાર કર્યો નથી। કિસી કા એસા કુછ બોલતે હા મુજે દેખના પડેગા એસા કહેકર હા છોડ દેતે હૈ। એ કાળે મોક્ષ અને અકાળે મોક્ષ બંને એક સમયમાં છે। અકાળનો અર્થ દેખો એ નય હે ને, કાલ નય ઓર અકાલ નય, 5 સમય મેં કાલ કી અપેક્ષા લેતે તો કાલ નહીં સે હમ કહેંગે, ઓર અન્ય હા અન્ય સમય કી અપેક્ષા વાત કરેંગે તો અકાલ નહીં સે કહેંગે। અકાલનો અર્થ કે લે દેખો યહાં, અકાળનો અર્થ કે સ્વભાવ પુરુષાર્થ એ લેવાનું છે। કાળ તો એ જ સમય છે, પણ એ સમયમાં પુરુષાર્થ ને સ્વભાવ આદિ છે, આદિ લે ને 5 સમય કોણ સે હૈ, હા નવી હા સો પહેલે સ્વભાવ પુરુષાર્થ બરોબર નિમિત્ત, એ 5મા હૈ, 4 તો ઉપાદાન હૈ ઓર 1 તો નિમિત્ત હૈ ને। તો કે આદિ લે ને ઉસમે એને અકાળ કહેવામાં આવે છે. પેજ નંબર 12. તીસરા પેરેગ્રાફ હોય છે, તીસરી લાઈન. કાળે મોક્ષ અને અકાળે મોક્ષ પણ સમય તો એ જ છે. હા, માત્ર અકાળે કહેવાનો આશય એટલો જ છે કે આ કાળ સિવાય સ્વભાવ પુરુષાર્થ ભવિતવ્યતા નિમિત્તનો અભાવ એ પાંચે સમવાય એક સાથે છે. વહા શાયિક વાલી પર્યા લીએ ને મોક્ષ કે લીએ, ઇસલિયે અભાવ કહા. નિમિત્ત કા અભાવ ને અભાવ રૂપ નિમિત્ત, નિમિત્ત હોતા નહીં એસા એસા નહીં લેના, અભાવ રૂપ નિમિત્ત તેને અકાળ કહેવામાં આવ્યું છે. પહેલી જાત્રા નીકળી હતી ને સંવત 2013ની, 22 વર્ષ પહેલાં, લોકો વિચાર કર્યા વગર આમને આમ ગાળા હાંખે રાખે, કાંઈ ખબર પણ નહીં, અને એસે કોઈ ક્રિયા કરતે રહેતે, કુછ ભી માનતે રહેતે, વિચાર વિના, તત્વજ્ઞાન કે અભ્યાસ વિના. અહીં કહે છે આ કાળે મોક્ષ થાય છે પર્યાયને પણ પરદ્રવ્ય કહેવામાં આવ્યું, એને મોક્ષ કે પર્યાય, કેમ કે જીવાદી સાતો તત્વ કોઈ હા પરદ્રવ્ય કહા હે ને, બહિર્તત્વ કહા. એક ભગવાન આત્મા એક સમયમાં ત્રિકાળ છે, એ તીનો કાલ સમિલ કરવો ત્રિકાળ હૈ એસા નહીં હૈ, એક સમય મેં ત્રિકાળ એને એક હિ સમય વો પરિપૂર્ણ હૈ, પૂરા કા પૂરા વિદ્યમાન, જિસકી ક્યુંકી તીનો કાલ વૈસા કા વૈસા કા વૈસા સ્વભાવ હૈ, પ્રત્યેક સમય મેં વૈસા કા વૈસા વિદ્યમાન હૈ. આ પર્યાય છે એ એક સમયની સ્થિતિ છે, અને આ એક સમયમાં ત્રિકાળ છે, ધ્રુવ છે. એક સમયમાં ત્રિકાળ કાર્થો તે વો નિત્ય હૈ, ધ્રુવ હૈ. એક સમયમાં વર્તમાન ધ્રુવ છે, એ જ ઉપાદેય છે, સમય દૃષ્ટિને એ જ આદરણીય છે, આશ્રય કરવા લાયક, હા આશ્રય કરવા લાયક છે, એ જ આદરણીય ઉપાદેય છે. અહીં ઉપાદેય શબ્દ લીધો છે, આશ્રય કરવા લાયક એટલે ઉપાદેય કરવા લાયક. સમજાણું કાંઈ? જીવાદી સાત તત્વોનો સમૂહ પરદ્રવ્ય હોવાને લીધે, પરદ્રવ્ય હોવાને લીધે દલીલ સહિત ન્યાય સહિત વાત છે, ખરેખર ઉપાદેય નથી. વહાં તો હે યે કહા ગાથા મેં, યહાં તો ટીકા મેં ઉસકો ખરેખર ઉપાદેય નથી એસા કહેતે હૈ. ખરેખર એ સાત તત્વ છે એ આશ્રય કરવા લાયક નથી, ત્યાં લક્ષ્ય કરવા લાયક નથી, એ મૂળ વાત હૈ. હેય કા અર્થ ઉપાદેય નહીં હૈ, ઉપાદેય નહીં ઉસકા અર્થ ક્યા, વહાં લક્ષ્ય કરને લાયક નહીં હૈ. જ્ઞાન થાય ક્યા કહા, વો તો જ્ઞાન કા ગેય હૈ, ક્યુંકિ જ્ઞાન તો સબકો જાનેગા. જ્ઞાન થાય પણ આશ્રય કરવાથી લાભ થાય એમ નથી, એને વો કાર્યકારી હૈ કરકે ઉસી કો જાનતે રહેના ઉસી અભિપ્રાય કે સાથ, વો બરાબર નહીં. એ કહે રહે છે એનું જ્ઞાન કરવું, જ્ઞાનમાં જાણવામાં આવે છે, ક્યુંકિ જ્ઞાન કા સ્વભાવ હિ જાનન જાનન હૈ, પણ એ આશ્રય કરવા લાયક ઉપાદેય નથી. માન્યતા મેં ઉસકો કૈસે લેના હૈ યે બાત હૈ, ઉપાદેય નહીં હૈ એસી માન્યતા હોની ચાહીએ. જો તમે સાત તત્વને ઉપાદેય માનો તો ભગવાન ત્રિકાળ છે એને હેય માન્યો, અને પોતાના આત્માને પરમાત્મા પ્રકાશમાં શબ્દ છે. પરમાત્મા પ્રકાશ એ શાસ્ત્ર કા નામ, કિસને લિખા હૈ માલુમ હૈ? બ્રહ્મા યોગિન્દુદેવ, હા અપને યહાં હુઆ થા ના. પરમાત્મા પ્રકાશમાં શબ્દ છે, રાગાદીને ઉપાદેય માન્યો તેને આત્મા હેય થઈ ગયો. એને રાગ કરને લાયક જિસને માના, કરને લાયક માના એને, ઉસકે આદરણીય માના, ઉપાદેય માના, તો ઉસકે લીએ આત્મા હેય હો ગયા. એને ઉસને આત્મા કો ઉપાદેય નહીં માના, ક્યુંકિ રાગ કો ઉસને ઇસસે મેરા ભલા હોગા, ઇસકો કરતે કરતે મેરા આદગે ચલ કે પ્રકટ હોગા ધર્મ, એસા ઉસને માના હૈ, તો ઉસને રાગ કો ઉપાદેય માના. ઉપાદેય માના એટલે આત્મા હેય હો ગયા ઉસકા. ભલે વો મુંહ સે બોલ રહા હૈ કે આત્મા ઉપાદેય આત્મા ઉપાદેય, પરંતુ કર રહા હૈ રાગ કો ઉપાદેય, તો ઉસકે લીએ આત્મા હેય હો ગયા.
ઉપાદેય કા અર્થ યહાં કરને લાયક,
હા ઉપાદેય માના એને કરને લાયક માના, આદરણીય માના, ઉસસે લાભ હોતા હૈ માના. અહીંયા કહે જે સાત તત્વને ઉપાદેય માને देखो ये हेय और उपाधि ये मान्यता में लेने की बात है, जानने के लिए तो सारा ही है, सभी जो तत्व है, पर्याय है, द्रव्य है, सब है, परद्रव्य को भी, सबको ज्ञान तो जानेगा, जानने का निषेध नहीं है। कोई कहते परद्रव्य को जानना ही नहीं, वो जानने लायक नहीं, ऐसा नहीं है। वो कैसा जानना है उसका, ये मैं नहीं हूँ, आदरने लायक नहीं है, उससे मेरा कोई भी भला या बुरा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेरी कोई भी पर्याय मेरे अपने से होगी, परंतु पर्याय की तरफ भी नहीं ले देखना है हमें, तो त्रिकाली स्वभाव भाव जो है, जिसको यहाँ शुद्ध भाव कह रहे हैं, वही आदरणीय है, उसी को जानते रहना है। तो कहते जे सात तत्व ने उपादेय माने तो त्रिकाली द्रव्य तो लक्ष्यमा रहू नहीं, क्योंकि लक्ष्य तो सात तत्वों का किया, तो त्रिकाली का दुर्लक्ष हो गया, द्रव्य नो दृष्टि माथी अभाव थी गयो, किसमें से दृष्टि में नहीं लिया, दृष्टि में अभाव हुआ। वैसे तो द्रव्य तो कायम, जो स्वभाव भाव है तो कायम, ध्रुव भाव है, वो तो अनादि से अनंत काल तक कायम रहेगा, परंतु इसने दृष्टि में नहीं लिया है तो दृष्टि में उसका अभाव हुआ। दृष्टि में यानी उसके ये मैं हूं मान्यता में, उसको जाना नहीं और यही मैं हूं ऐसा माना नहीं उसने, ये उसकी दृष्टि में उसका अभाव हो गया, यानी उसको स्वीकार ही नहीं किया उसने। तो ये तो जितना पर्याय रूप है, अभी मैं मनुष्य हूं और मुझे ये इतना पुण्य करना है, यही उसने अपना कर्तव्य मान लिया है। तो कि द्रव्य नो दृष्टि माथी अभाव थी गयो, यानी उसकी मिथ्या ही दृष्टि है, तो उसमें उस दृष्टि में तो द्रव्य आया ही नहीं है, तो अभाव हुआ। अभी बात सांभवा मुश्किल पड़े, क्योंकि सुनेंगे तो उसका अर्थ भी समझने आना चाहिए कि द्रव्य क्या है, पर्याय क्या है, दृष्टि क्या है, उसमें अभाव हुआ है ने क्या हुआ, ये सब बातें अगर नहीं समझते, शब्द तो हम सुन रहे हैं पर शब्दों का भाव अगर पकड़ में नहीं आ रहा, तो उसका कोई जो उसका रहस्य समझ में आना चाहिए वो छूट जाता है। ये वो मार्ग छे प्रभु न हा त्रण लोकना नाथ तीर्थंकर देव जिनेश्वर परमात्मा नो आ हुकम छे, एनो आ मार्ग छे प्रभु, आ कोई पक्ष नथी, आ कोई वाड़ो नथी, यानी तू सच्चा मैं झूठा या मैं सच्चा तू झूठा, ये ऐसे कोई वाद करने के लिए नहीं, अपना कल्याण करने के लिए। कहते ए उपादेय नथी, तारे उपादेय कौन छे, कौन उपादेय नहीं है, यहाँ क्या बात बताई, जीवादि सात तत्व उपादेय नहीं है, तो उपादेय कौन छे, ए कहे छे सहज वैराग्य रूपी महलना शिखर नो जे शिखामणी छे। पोते मुनि कहे छे, मुनिपणू केवू छे के सहज वैराग्य, वैराग्य है ना, वैराग्य राग से यानी उसे रहित पना, राग से विमुख हो गए वो। सहज वैराग्य रूपी महलना शिखर नो जे शिखामणी छे, वैराग्य कोने कहे छे, दुकान धंधो वेपार छोड़ी दीदो, ब्रह्मचर्य लई लीधु एटले वैराग्य थई गयो एम नथी। क्या कहा, कभी कभी ऐसा होता ना, किसी के घर में कोई प्रिय व्यक्ति है, उसकी मौत हो गई, तो जिसको कहते श्मशान वैराग्य आ गया, अभी कुछ रुचता नहीं है, परंतु एक वो एक द्वेष रूप हो जाता है, अरोचक ऐसा हो गया उसको, थोड़े दिन के लिए हो जाता है, फिर वो गाड़ी फिर पहले जैसी पटरी पर आ जाती है। क्या कहते हैं, तो वैराग्य कोने कहे छे, जे पोतानी पूर्ण वस्तुनी प्रतीतिना अस्तित्वनी श्रद्धा। क्या कहा, पोतानी वस्तु तो परिपूर्ण है, उसकी प्रतीति के अस्तित्व की श्रद्धा, अने पुण्य पापना भाव थी विरक्त थो, मैंने तब ऐसा है ना, विराग से विरक्त होना, वैराग्य शब्द कैसा है, राग से विरक्तपना, एनु नाम वैराग्य छे। समझाणु काई, यहाँ तो पुण्य में तो रुचि हो रही है, क्योंकि पुण्य करने से मुझे अच्छे कर्म बंधेंगे और अच्छे कर्म का फल मुझे संयोगों की अनुकूलता मिलेगी, ये जिसकी बुद्धि है उसने वो बंध को और राग को करने लायक माना, उसने उपादेय माना, उसने हेय नहीं माना, उसने आत्मा को हेय कर दिया। ए समय सार मा पुण्य पाप अधिकार मा छे, पुण्य पाप ना शुभाशुभ भाव छे ए राग छे, एनाथी विरक्त थऊं ए वैराग्य छे। देखो मुनियों को भी शुभ भाव आ रहे हैं, परंतु उनसे वे विरक्त हैं, करने लायक नहीं मान रहे हैं, परंतु अभी अपनी भूमिका में ऐसे राग विद्यमान है, वो ज्ञान के गेय है उनके, फिर भी अपने को उससे भिन्न अनुभव उनका चलता रहता है। पर मात्र वैराग्य नहीं, पोताना शुद्ध पूर्ण तत्वनी प्रतीति अने पुण्य पाप थी हठीने वैराग्य, ए ज्ञान अने वैराग्य। क्या कहा? ज्ञान और वैराग्य दो बातें बती है। ज्ञान और वैराग्य किसको कहना? वो शास्त्र ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा है। तो पोताना शुद्ध पूर्ण तत्वनी प्रतीति, शुद्ध क्यों कहा? यानी वो कोई भेद नहीं उसमें, और अखंड है, अनंत गुणों का अखंड पिंड जो है और नित्य ध्रुव है, इसलिए उसको शुद्ध कहा। और पूर्ण तत्व है वो, उसकी प्रतीति, उसकी प्रतीति तो आत्मानुभव पूर्वक ही होती है। अने पुण्य पाप थी हटीने वैराग्य, ए ज्ञान अने वैराग्य बे शक्ति धर्मीनी साथे छे। समझानु काई? धर्मीनी ज्ञान अने वैराग्य शक्ति एक समय में बन्ने साथे छे। ज्ञान एटले त्रिकाणी उपादेय छे एनुं ज्ञान। देखो क्या कहा? त्रिकाणी उपादेय है उसका ज्ञान है आत्मा की अनुभूति, अने पुण्य पाप ना विकल्प थी विरक्त। देखो आ रहे हैं परंतु उसमें रचे पचे नहीं है, ऐसा लगता है अरे हम कहाँ फंस गए, हमें तो अंदर में अपने शुद्धात्मा के अनुभव में रहना है, परंतु अस्थिरता है, तो ये पुण्य पाप के भाव भी आएंगे, भूमिका अनुसार कहते उसको। चौथे वाला है तो अभी व्यापार धंधा करने का भी भाव है उसको, गृहस्थी है तो बाल बच्चों की भी बात, उनको एजुकेशन देना, जो कुछ उसके गृह से योग्य विकल्प आएंगे उसके, वो करने लायक वो अपना स्वरूप नहीं मान रहा है, उसको वो हेय ही मान रहा है। मान्यता में वो हेय है, और मान्यता में और अनुभव उसने स्व का कर लिया है, तो वो उपादेय है उसके लिए। क्या कहते हैं? पुण्य पाप ना विकल्प थी विरक्त, रक्त छे अनादि थी, जे रक्त ने उसमें रचा पचा, ए विरक्त थाय ए वैराग्य। ए मुनि कहे छे, हा हा भाषा तो सरल छे पण बापू तत्व तो काई अलौकिक छे, एम न समझवू के अमने न समझाय। क्या कहते हैं? ये ऐसा कोई मन में रखना नहीं कि मुझे नहीं समझता है, क्योंकि यहाँ से तो केवल ज्ञान अंदर से अपने से उत्पन्न होने वाला है, इतनी शक्ति तो अपने में पड़ी है, परिपूर्ण ताकत अंदर सामर्थ्य पड़ी है, तो ये तो कुछ नहीं उसके सामने। क्या कहा? एम न समझूं कि हमने न समझा है। बापू प्रभु लिखा है, आत्मा तो एक क्षण में केवल ज्ञान लई शके एटली ताकत वालो छे, एक समय में केवल ज्ञान लेवानी ताकत वालो कहे कि मने समझातु नथी प्रभु, कलंक लागे छे। समझातु नथी एम न कहेवू प्रभु, मार्ग ते मार्ग छे। आहा सहज वैराग्य रूपी एम भाषा लीधी छे ने, सहज वैराग्य नो अर्थ के सम्य दर्शन सहित पुण्य पाप थी रहित, ए वैराग्य छे। सहज कहाँ उसमें? आ तो आचार्य ना आवा शब्दो छे, एवा दिगंबर संतोना जेवा शब्दों क्यांय नथी। अलौकिक वात छे बापू, ए समझवा थोड़ो वखत आपवो पड़े। निशाळना भणतरमां तो 7-8-10 वर्ष काढे भणता भणता, अभी तो आजकल तो कितने साल जाते है ना, अभी तो 2 साल क्या 2.5 साल क्या, उसके तो क्लासेस वहीं से शुरू हो जाते हैं। हाँ 1 साल, अच्छा इनको मालूम है अभी ज्यादा घर में है, अभी तो गर्भ में बालक आया तभी से भी कुछ कुछ चालू हो जाते हैं। हाँ है ना, एडमिशन भी और उसके भी संस्कार ने कुछ कुछ चलता रहता है। हाँ ऐसा चलता है। क्या आईएससी क्लास कुछ? हाँ नहीं वही क्या बोल रहे, ऐसा बोला ना आईएसपी क्लास। हाँ क्या होता है उसमें? हाँ गर्भ से ही संस्कार शुरू हो जाते हैं। देखो ये तो लौकिक पढ़ाई हो तो पहली से तो दसवीं क्लास, उसके पहले जो कुछ केजी वगैरह होता होगा और कुछ जो नर्सरी होते होंगे, और ये तो केवल स्कूल पढ़ने से क्या होगा, फिर कॉलेज की पढ़ाई, फिर हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, आधे के ऊपर तो जिंदगी तो वहीं पर चली जाती है। और उसके लिए हम कितना देते हैं, स्कूल का समय तो है इतना 11 बजे से 5 बजे जो कुछ मॉर्निंग हो या इवनिंग जो कुछ, और फिर घर में आके होमवर्क सारा, फिर वो बारम्बार वो रटना करना, परीक्षाएं देना, तो बाहर का तो हाँ क्लासेस और फिर माँ को और बाप को इतना टेंशन होता है कि वो पीछे पड़ती है, और फिर वो हाँ। तो ये तो हम लौकिक एक डिग्री के लिए, लौकिक एजुकेशन के लिए इतना करते हैं, और ये तो जो हम कहते कि अनंत काल में जो नहीं हुआ है वो करना है, उसके लिए कितना समय दे पाते हैं, टाइम ही नहीं, क्योंकि इम्पोर्टेंस नहीं है उसका। जिसको इम्पोर्टेंस लगता है उसके लिए टाइम निकल आ जाता है ना। हमारो एक मित्र तो हमें साथे भणता था, पछी अमे तो अमारी दुकान में जवा लाग गया, पछी भावनगर रस्ता में मळ्या हता। केम बेणी भाई शू करो छो? हूँ भणु छू। अरे क्या सुधी? 21 वर्ष थया भणता भणता। हाँ हाँ, मित्र हता सूरतना, एक डॉक्टर हता, एनो दीकरो हतो, एनो मित्र हतो। अमे तो दुकान में जवा लाग्या हता, पछी पण ए भावनगर भणता हता। मळ्या तो कह्युं कि अत्यार सुधी शू करो छो? कहे हूँ भणु छू। एना घरे गया हता, केटला वर्षथी भणे छे, केटलो मोटो अभ्यास हशे, कोई आपणने काई LLB के SSC हिम्मतभाई शू कहेवाय, BA एने काई पदवी कहेता हता, 21 वर्ष। अमारी पछी पण भणता भणता 10-12 वर्ष थई गया, तो आना माटे थोड़ो वखत लेवो पड़े ने प्रभु। अनंत काल थी समझन उनके काल में तो वो 21 वर्ष में हो जाता था, अभी तो क्या होता है 21 वर्ष में कुछ नहीं हो रहा है। अनंत काल थी समझो नथी, कल्पना थी मानी लीधु छे कि अमे काई समझिए छे, वो तो अपने को बहुत स्याना समझता है, कोई सुनाने जाता है तो उससे भी वो नहीं मैं ज्यादा समझता हूँ ऐसा मान लेता है वो। पण त्रण लोकना नाथ ने सर्वज्ञ परमात्मा ने कई रीत अने कई पद्धति कहवी छे ए समझवू अलौकिक वात छे। देखो शास्त्र भी जो सुनने की पढ़ने की रीत होती है, उसकी भाषा का अर्थ कैसे समझना, ये अगर नहीं तो, क्योंकि पहले तो अपनी कल्पना है ही खोटी, तो अनादि से खोटी मान्यता चली आ रही है, और जो पढ़ते तो अपने कल्पना के हिसाब से उसका अर्थ लगाना चालू करते, क्योंकि एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और ये सारा अर्थ अपने कल्पना के अनुसार करता है, इसलिए पढ़ने की मुख्यता नहीं, सुनने की मुख्यता पहले बताते हैं, और वो भी ज्ञानी के मुंह से सुनकर वो सही अर्थ उसको ख्याल में आ सकता है। सहज वैराग्य रूपी महल ना शिखर नो जे शिखामणि छे, छे शिखामणि एटले टोच ऊपर नो रत्न, चूड़ामणि कलगी नो रत्न। परद्रव्य थी जे परांगमुख छे कोण? मुनि पोतानी वात करे छे। परद्रव्य थी जे परांगमुख छे, यहाँ सात द्रव्य थी परांगमुख छे, सात तत्व कहना चाहिए था उनको, क्योंकि यहाँ सात तत्वों की बात चल रही है ना। हाँ, कि सात तत्व थी जे परांगमुख छे, जे आगे लिखा है देखो, सात तत्व जे परद्रव्य छे एना थी परांगमुख छे। हाँ हाँ, अने पांच इंद्रियोना फैलाव रहित, पांच इंद्रियना विस्तार रहित, एक देह मात्र रहयो। पांच इंद्रियों का विस्तार रहते हैं क्या, उनके इंद्रिया नहीं है? इंद्रिया है, परंतु वो इंद्रियों के जो विषय उसमें कोई रुचि नहीं है उनके। एक देह मात्र रहयो, नग्न मुनि छे ने, मुनिपणु तो नग्न ज होय छे, मात्र नग्न नहीं अंतर मां नग्नपणु, यानी बाह्य में शरीर से तो नग्न है ही है, अंतर में भी नग्न है, नग्न ने वो कषाय से रहित है, विकल्प थी रहित, त्रिकाणी द्रव्यना आनंदनु वेदन, अने पछी स्वरूप मां रमणता थता તેને નગ્નપણું થઈ જાય છે. વસ્ત્ર રહે અને મુનિપણું હોય એમ નથી. વસ્ત્ર સહિત મુનિપણા માનતે તો મહાન મિથ્યાત્વ હે. તો કે તે વસ્ત્ર રહે અને મુનિપણું હોય એમ નથી, અને વસ્ત્ર છૂટી ગયું અને નગ્નપણું થઈ ગયું તો મુનિપણું છે એમ પણ નથી. ક્યાં કહા એ વસ્ત્ર કેવલ છોડ લીએ ઇસલિયે મુનિ હુએ એસા નહીં હૈ. ઉત્તર અંતરંગ ઉનકી જો દશા હૈ કે વહાં તો અતિન્દ્રિય આનંદ કા અનુભવ ઇતના પ્રચુર સ્વસંવેદન ચલ રહા હૈ. તીન તીન કષાય કા તો અનુદય હૈ, અભાવ કહેતે હમ ઉસકો. એક સંજ્વલન કષાય જો અત્યંત મંદ એસા વિદ્યમાન હૈ, ઓર વો ભી કરને લાયક નહીં માન રહે, ઓર બાહ્ય મેં 28 મૂલગુણો કા યથોચિત નિરતિચાર પાલન હો રહા હૈ, એસી ઉનકી અંતર બાહ્ય દશા ઉસકો મુનિપના કહેતે હૈ. उसको निर्ग्रंथ ग्रंथि यानी कोई मिथ्यात्व और राग द्वेष की ग्रंथि भी नहीं रही, और बाह्य में कोई परिग्रह नहीं रहा, उसको निर्ग्रंथ कहते हैं. ये पीछी और कमंडल जो है वो तो हाँ, कमंडल तो शुचि के लिए है, और जो पीछी जो है वो तो जीवों की विराधना टालने के लिए है, अहिंसा महाव्रत का पालन करने के लिए, जिसे बैठते उठते पे शास्त्र भी ये सब બનના ફેરના હૈ તો પીછી સે ઉસકો પરિમાર્જન કરકે ફિર ઉસકો પલટાતે હૈ. હા, સમજવામાં આવે છે ને? ઘણા દૂરથી આવ્યા છે ને, પોતાની સગવડતા છોડીને અહીં આવ્યા છે ને. અહીં કંઈ એક એટલી સગવડતા રસોડે ન હોય જેટલી આમ તમારે ઘરે હોય તેટલી, તો પણ સાંભળવા આવ્યા છે. કહે છે કે પાંચ ઇન્દ્રિયોના ફેલાવ રહિત દેહ માત્ર જેને પરિગ્રહ છે, અન્ય કોઈ પરિગ્રહ હૈ નહીં ઉનકે, જે પરમજીન યોગીશ્વર છે. હા હા, આ મુનિની વાત કરી છે. પરમજીન યોગીશ્વર, યોગીશ્વર તો અન્ય મતમાં પણ કહે છે, પણ એ યોગી નહીં. અંતર પૂર્ણાનંદના નાથમાં જોડાણ થઈ ગયું હોય તેને યોગી કહે છે. યોગ હોનાને જુડના, किसके साथ जुड़ गए हैं? अपने स्वभाव भाव में. यहाँ लिखा ना अंतर पूर्णानंदना नाथमा जोड़ान थे गयो, यानी वो उसको ही जानते रहे, उसी में एकाग्र हो गए. अन्य मतियाम ध्यान करे, कल्पना करे, ए बधु अज्ञान छे, ए तो मूढ़ता छे, ए योग नथी. योगनी आकर व्याख्या छे कि योग कोने कहे छे, नियम सारमा અંતરમાં સ્વરૂપની રમણતા, પૂર્ણાનંદના નાથમાં આનંદનું ભોજન, અતિન્દ્રિય આનંદનું ઉગ્ર ભોજન કરવું, તેને યોગ કહેવામાં આવે છે. અરે એસે જીવંકો યોગી કહેતે હૈ. એ અન્ય મતી કોઈ હઠ યોગી યા એસે યોગી વૈસે યોગી એ તો કોઈ વાત બરાબર હૈ નહીં. તેને પોતાની પર્યાયને દ્રવ્યમાં જોડી દીધી, એને અપને હિ સ્વભાવ મેં ઉસને અપના અપની પર્યાય જોડી દીએ. પોતાની પર્યાયને દ્રવ્યમાં જોડી તેને યોગ કહે છે. જે પરમજીન યોગીશ્વર છે, સ્વદ્રવ્યમાં જેની તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ છે, હવે એની વ્યાખ્યા કહેશે. હવે નેક્સ્ટ પ્રવચન 15 નંબર કા પેજ. નિયમસાર શુદ્ધ ભાવ અધિકાર 38મી ગાથા ચાલે છે ને. પહેલાં તો એમ કહ્યું કે આ શુદ્ધ ભાવ હું કહું છું, તો એ શુદ્ધ ભાવનો અર્થ શુદ્ધોપયોગ કે શુદ્ધ પરિણતિ નહીં, ક્યોંકિ પર્યાય મેં ભી તીન ભાવ હોતે હૈ. પહેલે મેં પહેલે શુદ્ધ ઓર અશુદ્ધ દો ભેદ કરેંગે, ઓર અશુદ્ધ કે પુણ્ય ઓર પાપ યા શુભ ઓર અશુભ એસે દો ભેદ કરેંગે. વો વાલા શુદ્ધ નહીં લેના યહાં પર, યાની વો પર્યાય વાલા શુદ્ધ ભાવ કી બાત નહીં હૈ. यहाँ शुद्ध भाव कहने से त्रिकाली स्वभाव भाव उसको यहाँ शुद्ध भाव कह रहे हैं. इसलिए कहते शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग यानी अपने आत्मा में लीनता, शुद्ध परिणति आत्मा में लीनता नहीं है, फिर भी पर्याय में वो शुद्ध परिणति चल रही है, वो दोनों को ही शुद्ध भाव कहते, वो बात यहाँ नहीं है. हाँ, शुद्ध भाव है त्रिकाली ज्ञायक भाव, सर्वज्ञ स्वभावी पूर्ण. देखो हम अभी पर्याय में सर्वज्ञ नहीं है, अल्पज्ञ है, परंतु स्वभाव से हम हमारा शुद्ध भाव कैसा है तो सर्वज्ञ स्वभावी और पूर्ण है। पूर्ण करना नहीं है, वो पूर्ण है, उसको स्वीकार करना है और उसका लक्ष्य करना है तो पर्याय पूर्ण हो जाएगी। लोग कहते पर्याय को पूर्ण करना है तो पूर्ण करने के लिए ये करूं वो करूं ये क्रियाएं करूं तो हम पूर्ण हो जाएगा, इसे मानते हैं। अहीं द्रव्य स्वभाव ने शुद्ध भाव कहवामां आव्यो छे, ये महत्व की बात है, क्योंकि कहां कौन से गाथा में क्या विषय चल रहा है, किसको क्या कहते हैं, वो हमें समझना आवश्यक है। नहीं तो पुण्य अने शुभ शुभ राग ये अशुद्ध राग छे, अशुद्ध योग छे, अने शुभ राग अशुभ राग थी रहित ये शुद्ध योग छे। शुद्ध योग ये शुद्ध योग पर्याय छे। शुद्ध योग कहो के शुद्ध उपयोग कहो, इन्हें शुद्धोपयोग कहते उसको, ये तो पर्याय छे। ये पर्याय मोक्षनु कारण कहूं ये पण एक व्यवहार, क्योंकि पर्याय को पर्याय का कारण कहा ये भी व्यवहार हो गया, क्योंकि पूर्व पर्याय को नेक्स्ट यानी उत्तर पर्याय का कारण कह देते हैं कहीं कहीं, पर यह है व्यवहार है, उपचार है। मोक्षनु कारण स्वद्रव्य छे, क्योंकि पर्याय में से पर्याय नहीं आती, वो द्रव्य में से आती है, इसलिए वो स्वद्रव्य उसका कारण है। आ हेय अने उपादेय तत्वना स्वरूपनु कथन छे, जीवादी सात तत्वोनो समूह परद्रव्य। आहा हा, संवर निर्जरा ने मोक्ष ए पण बहिर्तत्व छे, क्योंकि आश्रव बंध तो पुण्य पाप को तो मानने को तैयार है, परंतु अरे संवर निर्जरा मोक्ष वो भी परद्रव्य, वो भी है या हम तो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, तो कहते हैं कि पर्याय छे ने, पर्याय द्रव्य मा पेशती नथी, प्रवेश करती नथी। द्रव्य ऊपर पर्याय तरे छे, ऐसा नहीं लेना कि द्रव्य है और उसके आउटर वो कवरिंग में पर्याय हो रही, ऐसा नहीं है, उसका भाव पकड़ना है। ए अपेक्षा थी पुण्य पाप ने आश्रव बंधने तो बहिर्तत्व कहूं, पण पोतानो त्रिकाणी द्रव्य स्वभाव एना आश्रय थी जे मोक्ष मार्ग प्रकट थयो ए पण बहिर्तत्व छे। हा हा, मोक्षनो मार्ग जे छे ए पण बहिर्तत्व छे, केम के संवर निजरा में आवी गयो। अहीं पाठ में तो हे ये उपादेय कहूं अने टीकाकारे जरा एम शब्द लीधो के जीवादी सात तत्वों समूह परद्रव्य होवाने लीधे, परद्रव्य होवाने लीधे, बहु सूक्ष्म बात भगवान। आहाहा, पाठ में हे ये छे पण टीका में उपादेय नथी एम कहूं, मूल गाथा में तो हे ये कह दिया और टीका में ये उपादेय नहीं है ऐसा गया। पाठ में जीवादि बहित तच्चम हेयम छे, पण अर्थकार टीकाकार कहे छे आहा के पर्याय जे बहिर तत्व छे ए उपादेय नथी। वो बहिर में र आधा होना चाहिए, बहिर तत्व। निमित्त उपादेय नथी, दयादानो व्यवहार रत्नत्रयनो विकल्प उपादेय नथी, विकल्प की बात है ना यहाँ पर। हाँ, पण मोक्षना मार्गनी पर्याय पण उपादेय नथी। देखो ये व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प वो तो शुभ भाव में चला गया, परंतु जो निश्चय मोक्ष मार्ग जो है समय दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय, वो पर्याय भी उपादेय नहीं ऐसा कहते। एमने परद्रव्य कहूं ते घरनु नथी कहूं, एने टीकाकार मुनिराज ने अपनी कल्पना से वो बात नहीं निकाली है, घरनु नथी कहूं ने अपने से नहीं बताया है, केम के 50वीं गाथा में कुंदकुंद आचार्य कहूं छे, आने वाली 50वीं गाथा में वो स्वयं कुंदकुंद भगवान ने ये बात लिखी है के जेटली निर्मलादि पर्याय छे ए परद्रव्यम परभावाह इति हेयः, एवा त्रण शब्दों 50वीं गाथा में छे। 50 परद्रव्य परभाव कल बताया था निकाल कर, है ना, अने एमा समयसार नो आधार लीधो छे। सिद्धांतनी आ बाजू श्लोक छे एनी नीचे चौथी लाइन में परद्रव्य कहूं छे, ए समयसार नो कलश छे, एमा पण જેની વાત બહુ પ્રભુ, જેને સર્વજ્ઞપનું આત્માનો સ્વભાવ. દેખો હમ જાનના હમારા સ્વભાવ હૈ તો કિતના જાનના સ્વભાવ હૈ, જો સ્વભાવ તો ઉસમે મર્યાદા નહીં, તો સ્વભાવ હી હમારા સર્વજ્ઞ સ્વભાવ હૈ, ઓર સ્વભાવ હી હમારા અરાગ સ્વભાવ હૈ, જિસકો વિતરાગ સ્વભાવ કહેંગે. સ્વભાવ વૈસા હી હૈ, જેસે પરિપૂર્ણ શાંતિ કહો, અતિન્દ્રિય આનંદ સે ભરપૂર કહો, એ સબ સ્વભાવ ભાવ હૈ હમારા. તો કહેતે કે સર્વજ્ઞપનું આત્માનો સ્વભાવ એ નિરંતર વર્તમાન અને વર્તી રહ્યો છે, અને હંમેશા વો હૈ 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 વિદ્યમાન 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 રહેતા હૈ. એ ત્રિકાળી વર્તમાન સર્વજ્ઞ સ્વભાવ, ત્રિકાળી બધ વર્તમાન અને ત્રિકાલ મેં રહેને વાલા, હર સમય મોજુદ સર્વજ્ઞ સ્વભાવ, એ અપેક્ષાથી મોક્ષના માર્ગની જે પર્યાય છે એનો આશ્રય કરવાથી તો વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે. જેમ પરદ્રવ્યમાંથી પોતાની પર્યાય નથી આવતી, ક્યાં કહા, કે અપની પર્યાય અપને મેં સે આતી હૈ, તો કહેતે જેસે પરદ્રવ્યમાં સે પર્યાય અપની પર્યાય નહીં આતી, એમ પર્યાયમાંથી પર્યાય નથી આવતી, તેથી પર્યાયને પરદ્રવ્ય કહ્યું છે. ન્યાય સમજતે ના, પરદ્રવ્ય મેં સે હમારી પર્યાય નહીં આતી, ઓર પર્યાય મેં સે પર્યાય નહીં હોતી, ઇસલિયે પર્યાય કો ભી પરદ્રવ્ય કહેંગે. આ તો કોઈ દી સાંભળ્યું નથી એવી વાત છે. ત્યાં પૈસા અડે ધૂળમાં નવરાશ નથી, પણ પ્રેમ છે એટલે છોડીને અહીંયા આવ્યા છે. માર્ગ ઘણો સૂક્ષ્મ છે પ્રભુ. આહા હા, દેવગુરુ શાસ્ત્ર એમ કહે છે કે અમે તારા આદરણીય નથી હો, ક્યાં કહા, શાસ્ત્ર મેં યહી બાત બતા રહે, ભગવાનને યહી વાત બતાઈ, હમારે ગુરુ ભી યહી બાત સમજા રહે, ઉપદેશ તો યહી હો રહે કે હમ આપકે લિયે આદરણીય નહીં હૈ. સર્વજ્ઞ એમ કહે છે કે અમે તારા આદરણીય નથી, એ તો મોક્ષ પાહુડની, કલ હમને દેખા ને, વો તો અષ્ટ પાહુડ મેં એક મોક્ષ પાહુડ નામ કા ઉસકા જો ભાગ હૈ, સોળમી ગાથામાં કહ્યું હતું ને, પરદવ્વાઓ દુઃખ ગઈ. સંત આચાર્ય કુંકુંદાચાર્ય કહે છે, પ્રભુ તારી પ્રભુતા આગળ તારા સ્વદ્રવ્ય પાસે અમે પરદ્રવ્ય છીએ, અને અમારા ઉપર લક્ષ્ય કરીશ તો તારી દુર્ગતિ થશે. ક્યાં કહે, તે આચાર્ય સ્વયં બતા રહે હૈ કે તેરે લીએ હમ પરદ્રવ્ય હૈ, યહાં લિખા ને, તારા સ્વદ્રવ્ય પાસે અમે પરદ્રવ્ય છીએ. આચાર્ય અપને શિષ્યોંકો કહે રહે કે તુમ્હારે અપને સ્વદ્રવ્ય કે સામને હમ તો પરદ્રવ્ય હૈ, ઓર હમારા અગર લક્ષ્ય ચાલુ રખેંગે તો આપકી દુર્ગતિ હો જાયગી. પરદવવાદો દુઃખ ગઈ, સદવવાદો સુખ ગઈ.
યહાં જો બાત બતા રહે હૈ કે દુર્ગતિ હોગી તો ક્યા હોગા એક્ચુઅલી, તો બાત તો એસી હૈ કે હમ દેવગુરુ શાસ્ત્ર કી પૂજન કા અભી ઉનકો આદર વગેરા દેંગે તો હમ મરકર સ્વર્ગ મેં જાયેંગે. સ્વર્ગ મેં જાને સે ક્યા હોગા, વહાં અનુકૂળતા અધિક મિલેગી. વો તો એસા શાસ્ત્ર મેં બતાતે હૈ કે જૈસા ગરમ ઉબલતા હુઆ ઘી વો આંખ પે એસે છાટા કરે તો જીતના ઉસમે તકલીફ હોતી હૈ ઉતની ઓર ઉસસે ભી અધિક સ્વર્ગો મેં તકલીફ હૈ. હમ એસા સમજતે હૈ માનતે હૈ કે સ્વર્ગ મેં બહોત સુખ હૈ, સ્વર્ગ મેં સબ, લેકિન વહાં પર ભી દુઃખ હૈ. અગર સુખ હોતા તો વહાં સે જીવ વાપસ ક્યો આતા, સિદ્ધ ગતિ મેં સુખ હી સુખ હૈ, તો એક દફે સિદ્ધ હુઆ તો વાપસ કોઈ નહીં આતા. એ ચારો હી ગતિ મેં દુઃખ હી દુઃખ હૈ, ઓર હમને એસા માન રખા હૈ, કિસી ને હમકો સિખાયા હૈ, યા હમે હમારી એસી માન્યતા હો ગઈ હૈ કે સ્વર્ગો મેં સબ અચ્છા હૈ, વહાં અનુકૂળતા હૈ, લેકિન દૂસરો કો દેખ દેખ કર જીસકો હમ ક્યાં બોલતે આપ ગુજરાતી
જલન
ઈર્ષ્યાભાવ, યાની એનવીનેસ જીસકો ઇંગ્લિશ મેં કહેતે હૈ, ક્યારે ઇસકે પાસ ઇતના, ક્યોંકિ જો મિનિમમ ઓર્ડિનરી જો દેવ હૈ ઉસકો 32 દેવાંગનાએ હોતી મિનિમમ, ઓર અધિક સે અધિક કરોડો, તો ઉસકો એસા લગતા કે અરે યહાં કૈસા લગ રહા હૈ, इसके पास इतना पैसा है, मेरे पास कुछ नहीं है। झोपड़पट्टी में जो रहते हैं उनको तो अंदर से ऐसी जलन रहती है, वैसे वहां पर मानसिक दुख बहुत है। और हम मानते हैं कि अरे हमें तो स्वर्ग में ही जाना है, क्योंकि वहां की पता नहीं ना अपने को असल में क्या है। एक बात निश्चित पहले में पहले ध्यान में रखो कि चारों ही गति में दुख ही दुख है, इसलिए पंचम गति जो सिद्ध गति है वहां जाने का जीव का प्रयत्न होना चाहिए। आगे
देखो यहाँ क्या कह रहे हैं। मार्ग घनो सूक्ष्म, वो पर दो लिखा है ना बोल्ड, उसके नीचे की लाइन, भगवान मार्ग घनो सूक्ष्म छे। अत्यारे तो एवी गड़बड़ थई गई कि आटली मुश्किली पछी केटलाक भाग्यशाली लोकोना काने पड़े छे। आ तो अंतर देखो लिखा है ना, भाग्यशाली लोगों से कान पड़ते, ये नहीं ऐसी कोई भोग तो ऐसा नहीं कि वो हमारी बात सुनने वाले भाग्यशाली, ऐसा उल्टा अर्थ नहीं लेना उसमें से, कि ये जो सत्य बात है हम कहते हमको पुण्य के लिए करे, जो कुछ पुण्य का उदय है तो इसी में गिनो। लोग तो पैसे में गिनते हैं, लगता है कि अरे यहाँ दो घंटे बैठने के बदले धंधे पर दो घंटे बैठते तो कितना हमको आमदनी कितनी हो जाती, यहाँ बैठने से क्या फायदा, तो यहाँ बैठने से क्या फायदा, ये बातें जो समझ में नहीं आ रही थी वो उस संबंधी हमारे ज्ञान हो गया, समझ में आ गए, सब बहुत फायदा है। तो जिसको कहेंगे वो तो कुछ महान पुण्य का उदय है तभी ये बातें सुनने और समझ में आ सकती है, नहीं तो सुनने का भी अवसर नहीं मिलता है। यहाँ लिखा है ना आटली मुश्किली पछी, यानी आज तक तो ऐसा तो हम अन्य अन्य ही कल्पनाओं में घूमते थे, केटलाक भाग्यशाली लोकोना काने पड़े छे।
यानी यहाँ पर ये कहना चाहते हैं जो सोनगढ़ में शिविर लगता था वहाँ तो लोगों को बहुत मतलब असुविधाएं, अभी पहले भी आया था, जैसे आपके घर में रसोड़े में यानी उनी उनी रोटली मिलती है, ये मिलता है, वैसा तो वहाँ शिविरों में जो बैठो जो हाथ में आवे वो खाओ।
अरे बड़े बड़े हॉल में सब ऐसे
पथारी डाल के 100-200 आदमी बैठे हैं तो कुछ लोगों को गर्म रोटी मिलेगी, कुछ लोगों को 10 मिनट बाद बनाई हुई मिलेगी, ऐसा होगा ना। तो वो कहते हैं कि इतनी मुश्किल है रहने के लिए भी, वो लोग गद्दी वगैरह कुछ नहीं देते थे, शतरंजी के ऊपर सोना पड़ता था
और एक एक हॉल में 100-100 लोग सो जाते थे,
और सुबह घूमने को जाना पड़ता था, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। मुश्किली थी, मुश्किल क्या लिखा इधर देखो, आटली मुश्किली पची केटलाक भाग्यशाली लोगों ना काने पड़े थे, यानी इतना होते हुए भी लोग 20-20 दिन जाते थे, उनमें से हम भी एक।
उसके नीचे के लाइन, आ तो अंतर चैतन्य सर्वज्ञ परमात्मा ना घर नी वाच्य, हा कहे जी कि हमें सर्वज्ञ देव अने अमारा संत मोक्ष मार्ग ना साधक અને અમારા શાસ્ત્ર એ ત્રણેય પરદ્રવ્ય છે, એ પરદ્રવ્ય છે, પણ અમને માનવા, પરદ્રવ્યને માનવું એ રાગ છે। એસા સર્વજ્ઞ ભગવાન સ્વયં કહે રહે કે હમ આપકે લિયે પરદ્રવ્ય છે ઓર હમકો માનના, પરદ્રવ્યને માનવું એ રાગ છે, એ પરદ્રવ્ય છે, એ તો પરદ્રવ્ય છે, પણ રાગથી ભિન્ન થઈને, અને રાગ ઇટસેલ્ફ દેખો દેખો देवगुरु शास्त्र तो पर है ही, अत्यंत भिन्न परद्रव्य है, परंतु उनको देखकर जो राग उत्पन्न हो रहा है भक्ति का परिणाम, उसको भी यहाँ परद्रव्य कह दिया है ना। पण राग थी भिन्न थईने पोताना द्रव्य स्वभाव नी दृष्टि ज्ञान अनुभव करियो, ए अनुभव नी पर्याय पण परद्रव्य छे। देखो क्या क्या बताया, पहले में पहले देव गुरु शास्त्र तो परद्रव्य साक्षात पर है, तो वो तो समझाने की भी आवश्यकता नहीं क्योंकि वो तो अपने से भिन्न द्रव्य है। उनको देखकर जो भक्ति का परिणाम होता है वो भी परद्रव्य, जिसको हम राग में परद्रव्य में कह दिया। अब कहते किसी ने उस राग का भी लक्ष्य छोड़कर अपने द्रव्य का लक्ष्य कर दिया और उसको सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय पर प्राप्त हुई, वो भी पर्याय होने से परद्रव्य, ख्याल में न एक एक, यानी वो तो उसका लक्ष्य छोड़कर जो स्वभाव का लक्ष्य करने वाले की भी जो पर्याय उत्पन्न हुई वो भी परद्रव्य कह दिया यहाँ पर। अभी वहाँ कुछ लोग ज्यादा आए हो गए इसलिए कहते आम बेसो आम बेसो, आ बाजू जरा नजर पड़े त्या, एने बहुत सारे जीव थे वहां पर। हुकमचंद जी ज्ञानचंद जी नो प्रभावनामा घणो मोटो हाथ छे। ये हुकमचंद जी भारी जी और ज्ञानचंद जी जो विदिशा वाले है, अने आ बाबू भाई त्रीजा, अमारा गुजरात माथी आ बाबू भाई अने हिंदी माथी ए बे, आहा हा मार्ग प्रभु। हम 75 में यात्रा में गए थे ना, ये तो तीनों तो थे ही थे, नेमीचंद जी रखियाल वाले भी थे और बहुत सारे अन्य भी पंडित थे वो पूरी। हाँ डेली उनके प्रवचन होते थे, इनका इतना लाभ तभी से तो हमारा जीवन ही पलट गया ना तभी से। कंडीशन थी कि रोज आपको सुनना है, कहीं पर भी जाओ, कभी कभी तो रास्ते में कहीं पर उतारा होता था बस प्रवचन। अहियाँ तो देव गुरु शास्त्र एम कहे छे के अमे तो तारा द्रव्य थी परद्रव्य तो छे ज, अने अमारी ऊपर लक्ष्य करीश तो अमे परद्रव्य छे तो तने विकल्प थशे, ए तो थशे पण तारा दसव द्रव्यना आश्रय थी जे कई समय दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पन्न थया प्रभु एने पण अमे तो परद्रव्य कहीए छे। ज्ञानचंद जी वात एवी छे भगवान, भाग्य होय एने काने पड़े एवी वात छे, लोकोने एकांत लागे छे, एकांत छे एकांत छे, कहते ने वो निश्चय 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 करते हो और आप कुछ करना तो नहीं चाहते हा? तो एकांत कहकर उसको उड़ा देते हैं। प्रभु सम्यक एकांत छे, यानी यही सत्य है, अन्य कुछ सत्य नहीं है। अहीं तो कहूं के संवर निजरा जे चारित्र सम्य दर्शन अनुभव सहित आत्मा अतीन्द्रिय आनंद नो पूर्णाम प्रवाह जेम पानी नो प्रवाह चाले छे आड़ो चाले छे, आ पूर छे आम ध्रुव चाले छे ध्रुव। आहा हा भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद नो पूर ए पूर आम प्रवाह ध्रुव तरीके छे, जेने शास्त्र मा निरंतर वर्तमान कहूं छे। त्रिकाण रहनारो ए अपेक्षा छोड़ी दीधी, त्रिकाण मा त्रिकाण नो भेद थई गयो, शास्त्र मा पाठ छे निरंतर वर्तमान छे अने हमेशा छे 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 विद्यमान छे, इसलिए त्रिकाण नहीं करता निरंतर वर्तमान कह दिया। जेम वर्तमान पर्याय संवर निजरा छे तो एने अमे परद्रव्य कहीए छे, ए रीते एनाथी भिन्न द्रव्य पण वर्तमान छे। एने पर्याय तो वर्तमान है परंतु उसके भिन्न जो द्रव्य वो भी वर्तमान है। पूर्णानंद नो नाथ हा हा, वितराग मूर्ति अचल अकंप एवी चीज, ए चीज नी अपेक्षाए एना आश्रय थी सम्य दर्शन अनुभव थयो, अतीन्द्रिय आनंद नो स्वाद आव्यो। ओहो हो ए स्वादना भागमा दर्शन ज्ञान चारित्र त्रण आवी जाय छे। एक्चुअली वो अनंत गुणों का जो अभेद रूप से जो स्वाद है उसको अतीन्द्रिय आनंद कहते हैं, उसमें ये सब आ गए। सम्य दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, जहाँ त्रणे ने मोक्ष मार्ग एम सत्वार सूत्र मा कहूं, ये चारित्राणी नी रस्व चाहिए ना, समय दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, जहाँ त्रणे ने मोक्ष मार्ग एम तत्वार सूत्र मा कहूं। तत्वार सूत्र मा उमा स्वामी ए समय दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहूं, ए पर्याय थी कहूं छे, ए ज्ञान प्रधान कथन थी आखू तत्वार सूत्र छे। हा केम के मा मतिश्रुत ने वात करी छे तो मतिश्रुत परोक्ष छे एम कहूं छे, अने मति छे ए इंद्रिय मन थी उत्पन्न थाय छे एम कहूं, तो ए बधो व्यवहार छे। क्या कहना चाहते है, तत्वार सूत्र जो ग्रंथ है वो ज्ञान प्रधान ग्रंथ है, क्योंकि उसमें तो ये मति श्रुत परोक्ष ज्ञान है उसकी बात वहां की है। मति ज्ञान जे छे એ ત્રિકાળી ચૈતન્ય ભગવાનના અવલંબનથી થાય છે એ મતી જ્ઞાન છે. ત્યાં પરોક્ષ કહીને પરની અપેક્ષાએ કહ્યું છે. વહ મતીશુ તો કો પરોક્ષ કહા થા, યહાં આત્મા કે અનુભવ મેં વો પ્રત્યક્ષ હે, પ્રત્યક્ષ વો અનુભવ કર રહા હે. એ પ્રશ્ન ઘણા વર્ષ પહેલાં મોરબીમાં ભાઈ હતા ને, શું નામ, દફતરી, મગનભાઈ દફતરી, મોટો હોશિયાર કહેવાતો હતો ને, મોરબી ગવર્નર આવ્યા હતા ત્યારે એણે ભાષણ કર્યું હતું. ગવર્નરે એને હોશિયાર કહ્યો હતો, એ જ કહું છું. ગવર્નર આવ્યા હતા, મારે એ જ કહેવું છે, ભાષણ કર્યું. એ મગનભાઈ કરીને દફતરી હતા, ગવર્નરે એના એવા વખાણ કર્યા, આ તો ચિત્રે વીંટ્યું રત્ન તમારા ગામમાં છે. એની સાથે ચર્ચા થઈ. લગભગ સંવત 1982ની સાલની વાત હતી. તો કહે, આ શાસ્ત્રમાં મતિશ્રુતને પરોક્ષ કહ્યું છે. કીધું, ભાઈ એ પરોક્ષ છે એ પરની અપેક્ષાથી છે, અને દૂસરોં કો જાનને કે લીએ વો પરોક્ષ હૈ. બાકી મતિ અને શુદ્ધ જ્ઞાન સ્વથી થાય છે એ તો પ્રત્યક્ષ થાય છે, અનુભવ તો પ્રત્યક્ષ છે એવો શ્લોક આવે છે. પરકો જાનને કે લીએ ઉસકો પરોક્ષ કહા, અપને આત્મા કા તો વો પ્રત્યક્ષ સ્વ સંવેદન જ્ઞાન કર લેતા હૈ. ઉદાહરણ છે ને, ખબર છે. અહીં તો કહે છે, શેઠ ક્યારે સાંભળ્યું નથી, મોક્ષ કદે સંભળાવનાર કોઈ નહોતું, ઉસકા કોઈ જવાબ નહીં દે રહે, એટલો આગ્રહ છોડીને અહીં આવ્યા. એ તો શેઠ છે, રાજકુમારના છોકરાની છોકરી એના ઘરમાં છે. બાપુ એ બધી બહારની ચીજ છે, આહા હા, બહારના પ્રપંચની વસ્તુમાં જેને અધિકતા ભાસે છે અને કાંઈ વિશિષ્ટતા લાગે છે, ક્યા કહેતે હૈ, અન્ય કુછ ચીજ અધિક લગતી હૈ, ઉસકી રુચિ હૈ, ઉસમે મહાનતા ભાષિત હો રહી હૈ, એ ચૈતન્ય, તો કહેતે એ ચૈતન્ય સ્વરૂપ ભગવાનનો અનાદર કરે છે. ક્યા કહા ફિર સે, બહારના પ્રપંચની વસ્તુમાં જેને અધિકતા ભાસે છે, ભલે વો બંગલા હો, મકાન હો, વસ્તુ એ કોઈ ચીજે હો, પૈસા હો, ધન સંપત્તિ હો, મેરે તો ઇતને પુત્ર હૈ, ઇતને અચ્છે હૈ, ઉસને ઇતને પઢે લિખે હૈ, યે એસા હૈ, વો વૈસા હૈ, ઇસમે જો અધિકતા લગતી હૈ, વિશિષ્ટતા લગતી હૈ, એ ચૈતન્ય સ્વરૂપ ભગવાનનો અનાદર કરે છે. ઇતની તો વાત ક્યાં, અરે હમ તો ઇતના પઢે, હમને ઇતને શાસ્ત્ર પઢે, એક સોક્ષમ જ્ઞાન કી જિસકો અધિકતા લગતી હૈ, ઉસકો વો તો સ્વભાવ ભાવ કી અધિકતા નહીં લગ રહી, યે પર્યાય કી અધિકતા લગતી ઉસકો, હે ને. એ બહારની ચીજ તો દૂર રહી, હવે અંતરની જે ચીજ છે સંવર અને નિર્જરા, જે ત્રિકાળી આનંદનો નાથ ભૂધત્તમ અસ્સિદો ખલુ સંમાદિઠ્ઠી હવદી જીવો, જે ત્રિકાળી આત્માના અવલંબનથી સમય દર્શન થાય છે, એમ જે 11મી ગાથામાં કહ્યું. દેવીલાલજી ક્યાં ગયા, ત્યાં નય પણ કહ્યું છે અને સમય દર્શન પણ કહ્યું છે. તમારો પ્રશ્ન હતો ને, 11મી ગાથામાં ભૂતાર્થને નય પણ કહ્યું, શુદ્ધને કહા હતા, શુદ્ધને ભૂતાર્થ છે. બીજા પદમાં વ્યવહાર અભૂતાર્થ છે, પર્યાય માત્ર અભૂતાર્થ છે, સંવર નિર્જરા મોક્ષની પર્યાય પણ અભૂતાર્થ છે, ઉસકો ગૌણ કરકે વો હૈ નહીં એસા અભૂતાર્થ કહે રહે. પછી બીજા પદમાં કહ્યું, વ્યવહાર અભૂતાર્થ છે એ ગૌણ લિખા હૈ, ગૌણ કરીને અભૂતાર્થ કહ્યું છે, પર્યાયનો અભાવ કરીને અભૂતાર્થ નથી કહ્યું, એને વો હૈ હિ ને એસા નહીં હૈ, પરંતુ વો પર્યાય હોને સે ઉસકો ગૌણ કરના હૈ, ઇસલિયે નહીં એસા કહે ગયા, અભાવ હૈ, નહીં તો વેદાંત થઈ જાય, ક્યુંકિ વેદાંત પર્યાય કો નહીં માનતે, ઓર ઇસને ભી પર્યાય કો સર્વથા નિષેધ કર દિયા, તો યે ભી વેદાંત હો જાયેગા. પર્યાયને ગૌણ કરીને નથી એમ કહ્યું, પર્યાયને અસત્ય કહ્યું એ તો ગૌણ કરીને અસત્ય કહ્યું છે. આ કહ્યું ને, સાત તત્વ છે, છે પહેલે છે વો સિદ્ધ કરેંગે, હૈ નહીં હૈ, હૈ નહીં હોતે તો બતાને કી જરૂર ક્યાં થી, જો હૈ ઉસકો ગૌણ કર રહે, ગૌણ કરના હૈ તો જો વિદ્યમાન હૈ ઉસકો ગૌણ કરકે વો હૈ નહીં એસા કહે રહે, ઉસકો વ્યવહાર કહેતે. દેખો, પર્યાયને અસત્ય કહ્યું એ તો ગૌણ કરીને અસત્ય કહ્યું છે. આ કહ્યું ને, સાત તત્વ છે, પર્યાય લક્ષે સાત તત્વ છે, અગર પર્યાય કી અપેક્ષા દેખેંગે તો સભી વિદ્યમાન હૈ, અસ્થિ છે. ત્યારે કહ્યું ને, જીવાદી સાત તત્વનો સમૂહ परद्रव्य होवाने लीधे पहले में पहले उसकी अस्थि सिद्ध करना है और फिर उसको निषेध करना है। जो व्यवहार ने को अभूतार्थ कहते हैं तो पहले उसको खड़ा करना पड़ेगा, तब जाके अभूतार्थ कहेंगे। अभूतार्थ भी गौण करने की अपेक्षा से, वो विद्यमान चीज है कि नहीं है, तो है उसको गौण करेंगे कि नहीं है उसको गौण करेंगे? वो है ही नहीं, अरे है ही नहीं, वो तो वेदांत हो गया। द्रव्य कभी भी पर्याय रहित नहीं होता है, पर्याय हमेशा विद्यमान होगी और द्रव्य उस समय उससे तद्रूप है, फिर भी हमें वो त्रिकाली का लक्ष्य करना है, इसलिए भेद ज्ञान की मुख्यता से उसको है नहीं करेंगे, उसको है ये कहेंगे, उपादेय नहीं कहेंगे। अपेक्षा अगर नहीं समझेंगे तो बहुत घोटाला हो जाएगा, नहीं तो दूसरा एकांत शुरू हो जाएगा यहाँ पर। हाल में आती बार तो पर्याय लक्ष्य सात तत्व छे अस्थि छे त्यारे कहू ने जीवादि सात तत्व नो समूह, पहले वो उसकी समूह कहकर उसके है वो सिद्ध कर रहे, परद्रव्य होवाने लीधे अस्तित्व सिद्ध करू, समझाणु काई। खरेखर तो भगवान कुनकुंदाचार्य तो एम कहूं जीवादि बहित तच्छम हेयम पाठ मा एम लीधु छे, पन अर्थकार टीकाकार पद्म प्रभु मलधारी देवे उपादेय नथी एम कहूं। मीठी भाषा, आहा प्रभु, पुण्य ने पाप नो भाव ए तो बंध कलुषित अने दुख छे, ये तो बंध भाव है ना, कलुषित है, अशुद्ध है, ए तो हे ये छेज, पन अंदर संवर निजाने मोक्ष पर्याय प्रकट थई, एक समय मा त्रण काल त्रण लोग जाने भी पर्याय प्रकट थई, मोक्ष की पर्याय है ना सर्वज्ञ की, केवल ज्ञान की। अहिया साधक जीव ने तो प्रकट नथी, पन साधक ने ए जे केवल ज्ञान पर्याय छे ए सद्भूत व्यवहार ने नो विषय छे, निश्चय ने नो विषय नथी, केम के केवल ज्ञान छे ए त्रिकाली द्रव्य नो भेद एक अंश छे, पन एमा छे तो सद्भूत व्यवहार नहीं थी कहवामां आवे छे, एने है वो इसलिए सद्भूत कह दिया, और उसका भेद क्या ना पर्याय है, केवल ज्ञान व्यवहार छे, सद्भूत व्यवहार नहीं थी छे, हा हा, अने पुण्य पाप भाव असद्भूत व्यवहार नहीं थी छे। अहीं तो सद्भूत यानी जो है उसका उपचार करना है, व्यवहार ने अने असद्भूत व्यवहार ने बन्ने ने परद्रव्य छे एम कहीने उपादेय नथी एम कहूं, क्योंकि जो संवर निजरा मोक्ष वो शुद्ध पर्याय है और बाकी वो जो अशुद्ध पर्याय है सबको मिलकर सद्भूत असद्भूत दोनों को मिलकर है ये कह दिया है, ये कहना चाहते हैं। पाठ मा है ये छे यानी मूल गाथा में है ये कह दिया, जीवादि बहित तच्छम हेयम, मीठी भाषा करी, सात तत्व उपादेय नथी, टीकाकार के उसमें जरा हड़वे हड़वे लीधो एना ऊपर आश्रय करवा लायक नथी। भगवान अंदर विराजे छे ने प्रभु पूर्णानंद नो नाथ, एज उपादेय छे, आ उपादेय नथी। जयचंद जी, आ जय थवानी वात छे अहीं, पराजय थवानी वात संसार मां छे। आहा, अभी रुकेंगे यहाँ। जावाणी के ज्ञान थे सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। वीरेश्वर।